दूसरा इतिहास अध्याय 9, अध्याय 9 पद 1 से लेकर 4 तक। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उसे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि उसे ना बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है, जब उसने ये सब देखा तब वो चकित हो गई, वो चकित रह गई। जितना उसने सुना था ये उससे अधिक था। उसने कहा, जो कुछ मुझे बताया गया था मैंने उसकी प्रतीति ना की थी, परंतु तेरी बुद्धि की आदि बड़ाई भी मुझे ना बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है। उसने उसकी मेज पर रखे भोजन को देखा। आप वापस पहला राजा अध्याय 4 को फिर से देखें, जिसमें सुलेमान की मेज पर रखे भोजन के बारे में बताया गया है। उसके यहां रसोई से प्रतिदिन 30 कौर मैदा, लगभग 300 कुशल मैदा जो उसके कुटुंबियों के लिए लगता था, 50 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल, चराइयों में से 20 बैल, 100 बेड़ बकरियां, और इनको छोड़ हिरन, चिकारे, मकमूर और तैयार हुए पक्षी। ये सब प्रतिदिन की लागत थी जो अत्यधिक विशाल लगता है। जब शीबा की रानी ने ये सब देखकर कि उसके कर्मचारी किस रीति बैठते, टहलुए किस रीति से खड़े रहते, पिलाने वाले कैसे हैं, वे कैसे कपड़े पहने हैं और वो कैसी चढ़ाई पर चढ़कर यहोवा के भवन में जाता है, तब वो चकित रह गई। अध्याय 9 पद 5 से लेकर 8 तक। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वो सच्ची है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ये न देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की, परंतु तेरी बुद्धि की आदि बड़ाई भी मुझे न बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने मुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। सबसे पहले उसने सेवकों को धन्य कहा। धन्य है तेरे सेवक जो तेरी सेवा करते हैं। धन्य है वे जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। सुलेमान ने फूल, पौधों और पशुओं के ऊपर भी अनेक पुस्तकें लिखी थी, इसलिए उसने कहा, धन्य है ये सेवक जो हर रोज यहां खड़े रहकर तेरी बुद्धि की बातों को सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे राज गद्दी पर विराजमान किया। अध्याय 9 पद 9 और 10। और उसने राजा को 120 किकार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए। जैसे सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए, वैसे देखने में नहीं आए। फिर हूराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो ओपिर से सोना लेते थे, वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। और शीबा की रानी अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के बाद अपने देश लौटी। जो कुछ भी उसने सुलेमान से मांगा उसने उसे दिया। अध्याय 9 पद 13। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 किकार था। ये बहुत बड़ी मात्रा में है। अध्याय 9 पद 14 से लेकर 31 तक। ये उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे, और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। और राजा सुलेमान ने सोना गड़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढाले बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल गड़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गड़ाकर 300 छोटी ढाले बनवाई। एक एक छोटी ढाल में से 300 शेकेल सोना लगा, और राजा ने उनको लेबनोनी वन नामक भवन में रख दिया। और राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनाया और चौके सोने में मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था। ये सब सिंहासन में जुड़े थे, और बैठने के स्थान की दोनों आलंग टेक लगी थी, और दोनों टेकों के पास एक एक सिम खड़ा हुआ बना था। और चेओं सीढ़ियों के दोनों आलंग में एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसे कभी न बना। और राजा सुलेमान का पीने के सब पात्र सोने के थे, और लेबनोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कुछ हिसाब ना था, क्योंकि हूराम के जहाजियों के संग राजा के तर्शिश को जाने वाले जहाज थे, और 3-3 वर्ष के बाद वे तर्शिश के जहाज सोना चांदी हाथी दांत बंदर और मोर ले आते थे। यूं राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोनों के पात्र, वस्त्र शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे, और अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4,000 थान और 12,000 सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों से और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और वो महानद से वे पेलिस्तियों के देश और मिस्र के सिवाने तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। और राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा हो गया, और लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब का क्या नाथा नबी की पुस्तक में, और शिलोवासी अहिया की नबुवत की पुस्तक में, और नबात के पुत्र यरोबाम के विषय इदो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? सुलेमान ने यरूशलेम के सारे इसराइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया, और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। शुरू के 9 अध्यायों में हमने सुलेमान के राज्य के बारे में पढ़ा, और अब दूसरा इतिहास की पुस्तक के बाकी बचे हुए हिस्से में हम इन बातों को संक्षेप में बार बार देखेंगे। इस समय राज्य अपनी चरम सीमा पर था, परंतु चकित करने वाली बात यह है कि कैसे वो राज्य उस ऊंचाई से शीघ्र ही नीचे गिर गया और नष्ट हो गया। जितना भी सोना उसने जमा किया था, उसका खजाना, ढालें जो चौके सोने की थी, उसके सोने के बर्तन शीघ्र ही मिस्र के राजा के द्वारा लूट लिए गए। इस तरह राज्य का वैभव शीघ्रता से लोप हो गया और वो अपनी महिमा की ऊंचाई से बहुत तेजी से गिरा। सुलेमान की मृत्यु के पश्चात ही उसका गिरना आरंभ हो गया था, यहां तक कि वो वैभव उसके पुत्र के राज्य तक भी न पहुंचा और राज्य में तुरंत ही अव्यवस्था हो गई और उसके पुत्र के सिंहासन ग्रहण करने से पहले ही राज्य दो भागों में बंटकर कमजोर हो गया।